Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have, alhamdulillah, amongst us, Hazrat Mawlana Mumtaz al-Haq Sahib, tamar barakatuhum, who has traveled many parts of the world. His majaz of Hazrat Hakim Arif Billah Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib, tamar barakatuhum. Allah Ta'ala give him long life, good health, keep his shadow upon us for a long time. Alhamdulillah, Hazrat Mawlana Yunus Sahib just spent a few days in Hazrat's company, present in Haramain Sharifain, Allah Ta'ala accept his suffer also. Hazrat Mawlana has been a great ustad at the Darulum at Newcastle for many, many years, produced so many ulama under his hands, and he stayed in the company of Hazrat Mawlana Qasim Sema Sahib Rahmatullah Alayhi. Then Mawlana was accepted to go to America. Lots of mujahada, lots of qurbani and sacrifice. Mawlana established a madrasa. Then he himself went through a test. But I don't want to give you a very long CV. I was fortunate to travel with Mawlana to Palestine at one time. Mawlana, you remember, we had a great experience in Masjid al-Aqsa. Mawlana himself, such a mujahid he is, that he even spent some time in the prison. If the rosy of a person is written in a certain place, Allah takes a person. And Allah elevates the status of a person like this. But he has come from Roshni. So I told Mawlana, Dil ki Roshni ho jaye, inshallah. He's come to make the place full of Roshni, inshallah. This is Masjid-e-Noor. But prior to commencing, Mawlana's son, Hazrat Mawlana Mustafa Kamil Sahib, always recites Ash'ar here in the majlis of Hazrat Mawlana Yunus Sahib, damar barakatuhum. So we requested Mawlana to commence tonight's program, inshallah, with some Ash'ar, inshallah.
Unke darbar aqdas mein jabhi koi unke darbar aqdas mein jab bhi koi ghamzada aa gaya tashna kaam aa gaya gham galat ho gaye maasiyat dhul gayi gham galat ho gaye maasiyat dhul gayi مغفرت عافیت کا پیام آ گیا مغفرت عافیت کا پیام آ گیا ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا تشنہ کام آ گیا ضبط صدقے ہوا ہوش قربان ہوئے دو جہاں عالم وجد میں آ گئے ضبط صدقے ہوا ہوش قربان ہوئے دو جہاں عالم وجد میں آ گئے دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی جب زباں پر محمد کا نام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا تشنہ کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا تھے جو لینے گئے خود کلیمِ خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں تھے جو لینے گئے خود کلیمِ خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا घर खुद खुदा का कलाम आ गया। उनके दरबार अकदस में जब भी कोई गमजदा गया, तश नकाम आ गया। गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मगफिरत आफियत का पयाम आ गया। बज़्म कौनैन की जब सवारी गई, आसमानों जमीन में सफे बिछ गई। बज़्म कौनैन की जब सवारी गई, आसमानों जमीन में सफे बिछ गई। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, मुक्तदी आ चुके तो इमाम आ गया। मुक्तदी आ चुके तो इमाम आ गया। उनके दरबार अकदस में जब भी कोई गमजदा आ गया, तश नकाम आ गया। गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मगफिरत आफियत का पयाम आ गया। जिक्र साकी कौसर से ए हम नशी, दिल को कुछ लज्जत फरहत ऐसी मिली। जिक्र साकी कौसर से ए हम नशी, दिल को कुछ लज्जत फरहत ऐसी मिली। जैसे तस्नीम खुद सामने आ गई, जैसे तस्नीम खुद सामने आ गई, जैसे हाथों में कौसर का जाम आ गया। जैसे तस्नीम खुद सामने आ गई, जैसे हाथों में कौसर का जाम आ गया। उनके दरबार अकदस में जब भी कोई गमजदा आ गया, तश नकाम आ गया। गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मगफिरत आफियत का पयाम आ गया। मगफिरत आफियत का पयाम आ गया।
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الأظفار، قص الشارب، وإعفاء اللحية، واستنشاق الماء والسواك، وغسل البراجم، وقص الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Respected علماء کرام، elders, brothers in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the seat of Hazrat Maulana Sheikh Tariqat Arif Billah Hazrat Maulana Yunus Patel Sahib Muddazilluhu Al-Ali wa damat barakatuh. It's difficult to sit in his place, but I know it is his command, and the people who are connected to him, it is their command. And it is for me to respect him
I am sitting here to show my respect to him. May Allah subhanahu wa ta'ala bring him quickly, safely to this place again in his community and in his muta'alliqeen and mustanideen. Also may Allah grant shifa to our Shaykh, Hazrat Hakim Akhtar Sahib Muddazilul Ali Arif Billah. May Allah prolong his life too, through his barakat. Allah subhanahu wa ta'ala given so much of noor and guidance to so many places of the world. Respective elders and brothers, this is the time where when to be a Muslim, it is a challenge. Chume goyam musalmanam bilarzam kedanam mushkilate la ilara. When I say I am a Muslim, I start shivering because I know the difficulties hidden behind La ilaha illallah. To say La ilaha illallah is always tough. In the time of Rasulullah ﷺ, Muslims were tortured and they were troubled. Even today, Muslims are paying the price of being Muslims and paying the price of saying La ilaha illallah. The closer person to the reality of La ilaha illallah, the more price he is paying. We should thank Allah that he hasn't selected us for great, great tests which other Muslims are going through, but we must be very watchful. In a country like South Africa, we must not think everything is okay. Because wherever they find Muslims are living in good shape, they create problem for them. So we have to be at guard. At the same time, we should become more stronger in deen. Because we know that this deen, we have not just taken it as a fashion or as something cheap. It is something very valuable. It is going to be with us, is going to take us to Jannah actually. This deen is not just a religion like other religions or the other followers who follow their religions. And at the time of convenience, they can just take it, otherwise they will leave it. It's not like that. For us, this deen is our life. This deen is our death. This deen is everything for us. And it is important that while we show our love to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we must also take firm decisions that we are going to bring his deen and his sunnah into our lives. The enemy of Islam identifies us as Muslims. And he has certain portfolio, you can say certain picture, or certain appearance in their mind of a Muslim. When a Muslim fits that picture, they catch him. They have categorized Muslims into various categories. To them, any Muslim can be categorized in three or four categories. One is most welcome. Anytime you can get in and out of America or Canada or England or Australia or New Zealand, European countries, France, Switzerland, Denmark, whatever. That is a compromising Muslim who will dance with them. He will not care for halal and haram. In fact, he will make his own fatwas, his own things. They say, this is the type we are looking for. Promote him. Give him whatever he wants. And there's an import-export carries on. From these countries, as these type of fashions go that side. And from those countries, those type of stupids come here too. Wahan ke bewakoof yahan, aur yahan ke gadhe wahan. Aur khuli ijazat hai unko. Khuli ijazat. Jab aao, jab jao. Unko koi puchne wala nahi. Aur sabko pata hai, zarurat nahi hai uski hum tashreeh kare. Dusre uske muqable mein uska opposite. Kuch in between bhi hai. Lekin opposite, वो हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, उनकी शक्ल देखकर, हमको देखकर वो पहचान जाते। हमारा एक स्टूडेंट अमेरिका में, वो अमेरिका से कनाडा जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू कनाडा। सो द अमेरिकन कैनेडियन बॉर्डर इज वेरी स्ट्रिक्ट राइट नाउ। इफ यू कम टू कनाडा फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज डिफरेंट, बट गो फ्रॉम अमेरिका टू कनाडा इज लाइक अ हेल फॉर मुस्लिम्स। So they stopped him at the border. He's a born American citizen. He's a black Afro-American. Very pious. Very good person. So they stopped him at the border. And who stopped him? Americans. So he asked them, you know, I'm going to Canada just for about a week or so, he wanted to. They said, no, you cannot go. He said, why? He said, you know, this picture of yours, no mustache and beard, we have been told we must be on the lookout for these type of people. You cannot do. No mustache, long beard. Choti beard nahi. Inko nahi jaane dena Canada. Ye khatarnak log hai. These are dangerous people. He was sent back. So he came back, I asked him what happened, and he said, they didn't let me go. I said, why? They told me, you haven't got mustache and you got long beard. I said, look at, they even recognize the true Muslims. Our Muslims are confused. Kaun sahi hai, kaun galat hai, hame nahi pata. Our people always ask, pata nahi, kisko follow karein, kya karein. Us gade ko pata hai, Amerika wale ko, ke isme sahi kaun hai, galat kaun. They know it. Other Mona Mahfazul Rahman Sahib from Darul Mazad, when he went to San Francisco, they stopped him there. They were kept him 2 days and then sent him back. They know who is who. Especially our Sheikh's name. Anyone who is connected to our Sheikh is in bigger trouble. But that increases our love for our Sheikh. Because we know the Rasulullah said, Ashadu Nasi Bala'an al Anbiya, Summa al Amsal fal Amsal. The people who are closest to Anbiya, they will be tested more than those who resemble them according to the level of resemblance. So we say, MashaAllah, this is a sign of our Shaykh being close to Allah subhanahu wa ta'ala, that his murids are being tested. He is sitting, he is not well even. They say he's a danger to America. The biggest superpower of the world says a paralyzed man is a danger to them. So can you imagine? We say, yes, he's a danger to your kufr. He's a danger to your zulumat, to your way of life. What you have selected is a shaitanic way of life you are promoting. He is promoting Islamic and Rahmanic way of life. So I selected for you this hadith before I get carried away with those things. The hadith of Rasulullah is giving us the importance of these things. As Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha says, Rasulullah said, Ashrum min al fitrah. And there are words in hadith also, Ashrum min al sunnah. There are 10 things which you must keep. You must have in you. They are sunnah for you. We must keep also in mind, our outer appearance in Islam is as important as the inner appearance. There are two appearances. We have to look after outside plus inside. It's neither one of them. You cannot say, I will look after my outside, inside, to hell with it. It's not like that. Or I will look after my inside, outside I don't care. It's not like that. In every ibadat of ours, there is an outer and inner part. Both have to be kept. Hajj, inner side and outer side. Zakat, inner, outer side. Like niyyah, like all those khushu, khuzu, etc., etc. And outside, the shell part of it, which we have to do it too. Just like the fruit. You will not buy a fruit if a guy is giving you a rotten one from outside. Say, yeah, inside is good. Inside what? Bahar se hi pata chal raha hai, andar ka kya dekhna. बाहर से ही देखकर तबीयत खराब होगी। गला हुआ सड़ा हुआ मैंगो पड़ा हो, वो कहते अंदर से बहुत मीठा है, अब ले लेंगे, ऊपर से मक्खियां बैठती हूं, यू विल नेवर बाइट। इसी तरह से एक मुसलमान को भी अंदर और बाहर दोनों चीजों की फिक्र करनी है। इस्लाम इज द नेम ऑफ इन एंड आउट बोथ, इस्लाम ईमान एहसान। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हदीस में हुजूर ने सब बयान कर दिया, ये सब मिलाकर चलना है। इफ यू आर गोइंग टू लीव वन साइड आउट यू विल बी अस्ट्रे। इन इस्लाम दैट टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, वन इज बातिनिया, वन इज जाहिरिया, बोथ आर स्टूपिड, बोथ आर अस्ट्रे। Forgive me my language, I was a teacher in madrasa, you know, ये हमारे लिए अल्फाज सख्त हम बोलते हैं कभी कभी। एक जाहिरी है, वो जाहिर के बेवकूफ, जाहिर के इज़ा तरबतुम फिल अर्द फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक्सुरू मिन अस्सलाह, व्हेन यू वॉक ऑन द लैंड यू कैन मेक कसर। सुभान अल्लाह, मस्जिद से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, दो कदम उठाए, कसर, दो रकात नमाज पढ़, ये जाहिर देखने का नुकसान। अल्लाह ताला से व्हेन यू वॉक इन टू द लैंड नो हार्म ऑन यू इफ यू मेक कसर ऑफ योर सलाह। दिस इज या वी आर गोइंग टू डू दैट, कूल, ऐसे करेंगे। उन्होंने जाहिर को पकड़ लिया, जाहिर के पीछे गुमराह हो गए। यू हैव टू अंडरस्टैंड जाहिर एंड बातिन बोथ, दिस होल बातिनिया ग्रुप, हाफ ऑफ द मुस्लिम उम्मास प्रॉब्लम फिरकाज आर एक्चुअली बातिनिया, दे ओनली फॉलो बातिन। नमाज, नो डोंट वरी अबाउट आउटसाइड, थिंक ऑफ गॉड, मजे हो गए, कुछ भी मत करो, थिंक ऑफ गॉड। पहले तो थिंक ऑफ गॉड था, उसके बाद उसको भी चेंज किया, थिंक ऑफ योर लीडर, और थिंक ऑफ दैट रिलीजियस सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो, बस एंड यू आर इनफ, इनफ फॉर यू, यू गेट द टिकट टू जन्नत। ये बातें नहीं लोग, सोम फास्टिंग, यू हैव टू डू ऑल दिस, ये तो पागल लोग हैं जो रोजा रखते सुबह शाम तक भूखे रहते हैं, पागल है, इनको कुछ समझ में आया। असल क्या है, सीक्रेट ऑफ योर लीडर मस्ट नॉट बी एक्सपोज, ये है असल। बातें नहीं है वो जाहिरिया के, मैंने मिसाल आपको दे दी, वी आर नीदर फ्रॉम दिस नोर फ्रॉम दैट। हम तो कहते हैं जाहिर को भी, दीन का जाहिर भी संभालो। नमाज पढ़ते हुए आपको मस्जिद में आकर नमाज चार रकात पढ़नी पड़ेगी, घर बैठकर ऐसे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। रोजा रखने में खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, खाते हुए रोजा नहीं हो सकता। वाज यू ईटिंग, आई एम फास्टिंग बिकॉज आई एम नॉट हर्टिंग समबडी, स्टूपिड। हम लोग वी आर ट्रेवलिंग इन द प्लेन वंस फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान, सो we wanted to make wudu in the plane, and we were about 5-6 people who were together, and at the back of the plane we wanted to go to the toilet, the people were standing there smoking, dono haathon se pata nahi tha, had a last thinking maybe last chance to smoke, abhi mar jayenge kya hoga, to marne se pehle ek puri cigarette ki dibbi uda do। So they were interested in smoking, we are standing now getting, you know, trouble, mufat ka smoke mil raha hai, musibat। So while we are waiting, then they started opening the toilet, people started going making wudu, so one of them, very scholarly type smoker, he asked me, Maulana aap log kya kyun idhar line lagayi hui hai, Pakistani tha, wahan se kitne wahan se uthte hain, तो हम भी पाकिस्तानी हैं, तो नोबडी मिसअंडरस्टैंडिंग। इसे मौलाना व्हाट आर यू पीपल, मौलाना साहब व्हाट व्हाई यू पीपल लाइनिंग अप हियर, वी वांट टू मेक वुजू, वांट टू मेक नमाज। एक मुसलमान को बताना पड़ता है कि वी आर गोइंग टू मेक वुजू, वी मेक नमाज। इसे व्हाट इज दिस, उर्दू में बोला, इसकी क्या जरूरत है, यहां खड़े होकर अल्लाह के बारे में सोच लो तो नमाज हो जाएगी। तो मैंने कहा अब इसको मैं क्या बोलूं, मैंने कहा भाई ऐसे तो नमाज नहीं होती, उसके लिए वजू करना पड़ता है, सारा तरीका हुजूर ने बताया, उसके बगैर तो नमाज नहीं होती। कहा नहीं नहीं हमारी तो हो जाती है, हम तो खड़े होकर अल्लाह के बारे में सोच लेते हैं, बस नमाज होगी, ये इतना लंबा चौड़ा आप लोग करते हैं, इसकी क्या जरूरत। तो मैंने उसको कहा देखो मैं आपको समझाता हूं एक बात, जब आपको भूख लगती है व्हेन यू आर हंग्री तो आप बिरयानी के बारे में सोच लिया करो, आपका पेट भर जाएगा। विल योर स्टमक बी फिल्ड इफ यू थिंक ऑफ बिरयानी व्हेन यू आर हंग्री। इसे देखो यही तो मसला है, मौली लोगों के साथ बहस करना बहुत मुसीबत है, मौली लोगों के साथ बहस नहीं करनी। मैंने कहा मैंने तो आपको बहस कर नहीं कहा, आपने खुद पूछा, मैंने आपको सिर्फ आपकी तशरीह की कि भाई वहां पर फिजिकली खाने की जरूरत पड़ती है, मुंह में निवाला डालते हो तब पेट भरता है, अगर बिरयानी के बारे में 10 साल भी तुम सोचते रहो हम भूखे मर जाओगे, यू विल डाई हंग्री। इसी तरह से नमाज के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, फिजिकली करनी पड़ेगी। इसमें अगर अल्लाह ताला को ऐसा करना था अल्लाह ताला हमें बता देते, मेरे बारे में सोच लिया करो, फिनिश, इतनी तफसील क्यों बताए। सारा वजू का बता दिया, उसके बाद नमाज के तरीके हुजूर ने तफसील से बताया, इसकी क्या जरूरत थी। वो कहते भाई अल्लाह के बारे में सोच लिया करो, फिनिश। तो हमें बहुत जरूरी है मुसलमान के लिए इस चीज को समझ जाए कि धोखा देते हैं मुसलमानों को कुछ लोग, जाहिर कित को दबा दबा कर वो एसेंस को छोड़ते हैं, कुछ लोग एसेंस को पकड़ते हैं, और वो भी एसेंस ऑफ सेल्फ मेड, होम मेड एसेंस, नॉट द रियल एसेंस, होम मेड एसेंस, एंड दे टेक अस अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ दी। यहां पर हुजूर ने कुछ मुसलमानों को तरीके बताए हैं, वो मुसलमान उनको अपने ऊपर जारी करे। मुस्लिम हैज टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स ऑन हिमसेल्फ। अशरु मिन अल फितरा, नंबर वन, फस्सुश्शारिब, मूछों को कटाओ, मुसलमान की निशानी। और ये कहा अशरु मिन अल फितरा, इसका मतलब ये पीछे अंबिया भी करते रहे, ये नेचुरल समथिंग विच अल्लाह ताला पुट इन द नेचर ऑफ मैन टू लाइक देम एंड टू हैव देम, एंड इट हैज बीन प्रैक्टिस बाय ऑल द ग्रेट अंबिया ऑफ अल्लाह सुबहानहु ताला एंड अप्रूव्ड बाय द सील ऑफ प्रॉफिट्स बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही सेड यस एंड ही प्रैक्टिस हिमसेल्फ एंड लेफ्ट इट फॉर द उम्मा। दिस हैव टू बी केप्ट। नंबर वन इज कस्सु शारिब, टेक केयर ऑफ योर मस्टाचेस, यानी गेट रिड ऑफ देम। बाज जगह पर इहफा उस शारिब भी है, मूछों को खत्म कर दो। बाज जगह जुज्जु शवारिब, काटो उनको। सो इहफा, जुज्जु, कुस्सु, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मींस इस्लाम डज नॉट लाइक मोस्टाचेस, फिनिश। लॉर्ड कुर्जन को मुबारक हो, अभी तो लोग भूल गए लॉर्ड कुर्जन को, पिछले जमाने में, पिछले जनरेशन में लॉर्ड कुर्जन को बड़ी मूछ होती थी, डरबन वालों को पता होना चाहिए। ये बर्तानिया वालों की, फ्रांस वालों की, उनकी सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत नहीं है कि लंबी लंबी मूछे रखकर उसके ऊपर हैंग करो, उसको स्विंग बनाओ उसको, ये लॉर्ड कुर्जन की सुन्नत। हुजूर की सुन्नत क्या है? कस्सु शारिब। उसके बाद फरमाया हुआ इफा उल लिहया, और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये भी मुसीबत मुसलमानों को चक्कर में आ गए मॉडर्न थिंकर की वजह, उनकी अकलमंदी या बेअकली की वजह से, कि थोड़ी सी भी मुंह पर दाढ़ी अगर हो तो दाढ़ी है। हुजूर के अल्फाज क्या है? देखो, लुक एट द वर्ड्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफा उल, यूनस है, यू मस्ट हैव बियर्ड, इल्तहू, वाई मेकिंग फ्रॉम लिहया, इल्तिहा, इल्तहा, यल्तही, इल्तिहान, सो इल्तहू, कोई ऐसा, बट इफा वर्ड हैज बीन, इफा मीन्स लेंथनिंग, इट इज रिफर्स टू सम सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बियर्ड, इफा, कुछ हैंगिंग होनी चाहिए उसमें, हैंगिंग। तो मॉडर्न थिंकर्स को ये चक्कर आ गया, एनीथिंग विच फ्रॉम फार अवे समबडी थिंग्स यू हैव अ बियर्ड। मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, गंगोही, द ग्रेट, ही वॉज ऑल्सो माई शेख, द ग्रेट स्कॉलर ऑफ इस्लाम, Ajib brain and Ajib knowledge and Ajib Hafiza, even in the old age, those, I think Maulana must have known him very well. Somebody was asking him the same question. Thodi si dadi agar ho to, kya khayal hai? Hazrat was jokey also and very sharp too. Very sharp-witted. Hazrat told him, you know, if somebody has 1 rand in his pocket, will you call him wealthy man? वहां पर तो बोलते हो जब तक यू नो बड़ा मिलियन 2 मिलियन ना हो तो वेल्थी पैसे वाला नहीं बोलेंगे उसको. 1-2 रेंट जो लेगा तो बेगर भी फिरता है जी. ए बेगर ऑल्सो वॉक्स विद फ्यू रेंट्स इन द पॉकेट. नोबडी कॉल्स हिम मैन ऑफ मनी. सो हाउ यू विल कॉल यू विल कॉल यू मैन ऑफ बियर्ड इफ यू हैव फ्यू हेयर ऑन योर चीक्स. उनका समय में आगे खत्म हो गया. In the matter of deen, we become very, you know, like relaxed. And we don't want to know much. But we look at Rasulullah's own way of life and look at the words he uses. And then we see how it was practiced throughout the years of Islamic history by the pious people, not by every Tom, Dick and Harry who carries some certificates in his hands and then wants to shake hands with the women. He said, I am a scholar of. I am the rector of a great Islamic university, so I can shake hands with women. Subhanallah. Rasulullah says, never used to shake hands with women. And he's telling a new Muslim woman, Yvonne Redley, I think that's her name. She became Muslim. By the company of Taliban, she became good Muslim. Our Sheikh always, Muddazilul Ali always says, you know, Sahaba are known to be Sahaba because of Suhbat. Sohbat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sohbat e saleh tora saleh kunat. Nek admi ki sohbat aapko nek karegi. Taliban ki prison mein wo aurat musalman hui, uska iman itna mazboot hai ki Sheikhul Azhar ko usne ek sabak sunaya. Sheikhul Azhar wanted to shake hand with her. Assalamu alaikum. She did not give her hand. Kaha main Taliban se padh kar aayi hu. वो मुजाहिदीन से पढ़कर आई. वो सही दीन को समझ. उसको दिस इज समथिंग वेरी बैड दैट यू पीपल इंटरप्रेटिंग इस्लाम इन अ डिफरेंट वे इन वेस्टर्न कंट्रीज. ही इज टेलिंग हर इन वेस्टर्न कंट्रीज यू गॉट सम डिफरेंट इस्लाम. वी गॉट सम डिफरेंट इस्लाम. उनका इस्लाम कुछ और हो गया. हलाल, हर चीज को हलाल करते हैं. सूद को भी हलाल. औरत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं एंड शी डिड नॉट शेक हिम. दैट इज अवर शरिया. So I was saying, beard and mustache, how Rasulullah is teaching us. We have to keep those words in our mind. Lengthen the beard. ये जो ये दाढ़ी है ये मर्द के लिए बहुत खूबसूरती का जरिया भी है. अभी अगर वेस्टर्न लोग दाढ़ी रखने लग जाए सारे मुसलमान लोग दाढ़ी रखेंगे. अगर कुछ फिल्म एक्टर्स दाढ़ी रखना शुरू कर दें पूरी दुनिया दाढ़ी रखेगी. लेकिन हुजूर ने दाढ़ी रखी और उसको एम्फोसाइज किया. मुसलमान को परवाह नहीं है. बहुत कम अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका वाले और यहां पर तो माशाल्लाह मेजोरिटी दाढ़ी वाले हैं. ये तो खुदा का शुक्र है किसी की मेहनत. हमें तबलीगी जमात वालों को बहुत दुआ देनी चाहिए. उन्होंने इन चीजों को हुजूर की सुन्नतों को जिंदा किया. वी मस्ट मेक स्पेशल दुआज फॉर तबलीगी जमात पीपल. और आपको डरबन वालों को सबको पता है व्हाट वाज़ द कंडीशन ऑफ पीपल इन डरबन. आई रिमेम्बर आई केम 1979 टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम पाकिस्तान एंड दोज वर द डेज व्हेन जमात रियली पिक्ड अप देयर एफर्ट. वी सीन द चेंज हैपनिंग. नाउ वी कम यू नो इज अजीब कंट्री. अजीब अजीब माहौल यहां का. डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल. कोई आदमी शैतानी करना चाहे उसको भी डर लगेगा. उसके इर्द गिर्द दाढ़ी वाले लोग हैं. उसके दीन वाले लोग हैं. रेडियो इस्लाम काम कर रहा है. मदरसे काम कर रहे हैं. खानकाएं काम कर रही हैं. लेकिन ओरिजिनल काम जो हुआ है फाउंडेशन वर्क वॉज डन बाय तबलीगी जमात. अमामे को जिंदा कर दिया. दाढ़ी को जिंदा कर दिया. मिसवाक को जिंदा कर दिया. मदरसों को आबाद कर दिया. मस्जिदें आबाद कर दी. लोगों को अकीदे लोगों के ठीक हो गए. वो एक चीज बेशुमार चीज है. The way of thinking, the way of life has changed because of them, because of their. Abhi unka ishtema ho raha hai. This weekend, mashallah, in Phoenix. Everybody should try to attend, inshallah. May Allah Ta'ala give them success also. And may Allah Ta'ala make it a means of hidayat for the four corners of the world. Hamara dil unke saath hai hamesha. So, ab ye sunnaton ko dekho, aur dekho tablighi jamaat ne kaise unko zinda kiya. Without debating, without fighting with anybody. Mohabbat ke saath. Qassu sharib wa ifa'u liha. Daadi ko lamba karo. Hamare hazrat bhi hamesha daadi ko bahut khayal rakhte hain. Even ulama, those who go, unki daadi ko check karte hain. Ki length kitni hai? One fist. Over the fist? No, not under the fist. Kuch logon ne samjha? Idhar se kaato. Over the nahi, idhar se kaato. Upar se nahi, niche se kaato. Aur puri daadi. Substantial amount, that's why I say, ifa'ul lihya wal bis. You are lengthening the beard. And that is the true sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, if someone did not have beard and he started it with the intention of lengthening it, or thodi si nikal aayi, koi baat nahi. After a while, inshallah, it will become full. Niyat to rakhni chahiye. Our Shaykh always says, Mutazirul Ali, that, you know, this sin of shaving the beard is such, is a continuously with you, on you. Imagine if a person dies while he was committing this sin of shaving the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he dies. With what face is going to stand in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? That's why those who do not have, they must have a niyyah at least, I am going to have it. Isko chhodne ki niyyat kar leni chahiye. And so kaatna waatna, iske saath khelna nahi chahiye. Must keep it in that limit afterwards. As Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, the practical example is, they used to hold it in the fist and cut it after the fist. So beautify it. Ifa'ul lihya. ये इंसान की हमारी खूबसूरती है. वो कहते हैं, हदीस में आता है कि दे आर एंजल्स हु आर मेकिंग तस्वीह ऑफ अल्लाह सुभान मन ज़य्यन अर-रिजाल बिल-लुहा वन-निसा बिल-ज़वाइब. ग्लोरी बी ऑन टू दैट पर्सनैलिटी अल्लाह सुभान व तआला हु हैज ब्यूटिफाइड मेन विद ब्यूटीफुल बियर्ड्स वन-निसा बिल-ज़वाइब एंड ही हैज ब्यूटिफाइड वुमेन विद ब्यूटीफुल फॉरलॉक्स. औरतों को अल्लाह ने सर के बाल में खूबसूरती दी, वो उसको कटाने में लगी हुई है, और मर्द को बियर्ड दी और इसके कटाने में लगा हुआ. दोनों गलत काम करते. उसको छोड़ने में सवाब, इसको यहां पर छोड़ने में सवाब. हजरत काजी शुरह वाज अ ग्रेट काजी, ही डिडंट हैव बियर्ड, ही नेवर यूज्ड टू शेव, नेवर ग्रू ऑन हिम, लाइक जस्ट लाइक मौलाना फ्रॉम इंडिया यूज टू कम, काजी मुजाहिदुल इस्लाम सर रहमतुल्लाह अलैह, rahmatullah le. He didn't have beard, but in their heart, how much love for beard was. This Qazi Shureh said, if beard was for sale, I would have bought it for 10,000 dinar. Agar daadi mil jati, ab to milti hai bazaar. Wo jaiz nahi hai, lekin wig jaiz nahi hai. Wig lagana. Agar wig jaiz hota, to yahan par jaiz hota, yahan nahi. If it was to be allowed, should have been here, not there. Lekin wo jaiz nahi. There were people who were ready to buy beards because they felt they are faulty, they do not look nice, they are not looking presentable without the beard. Ahnaf ibn Qais was a very wise man. He also became Muslim too. He was considered to be the leader of Bani Tamim. He had no beard. And his followers said, if we had an opportunity, we would have bought him for 20,000 dinar, would have bought him a beard. कहाँ से मिलेगी? ये तो अल्लाह की तरफ से खूबसूरती अल्लाह ताला देते हैं, हमें उसको वेलकम करना चाहिए हुजूर की सुन्नत समझकर. और ये मुसीबत नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत है. अमेरिका में हमारे दोस्त था एक इजिप्शियन यंग मैन, he had a beard and he was going for interview for citizenship. So his attorney told him that, you know, if they see you with beard, they may not give you citizenship. Aaj Musliman khub kamzor hai. So please remove it now. Afterwards, if they want to give you citizenship, keep it back. Left to you. But I think after 9/11, American government became mad totally. So they look at a man with beard, will be trouble. He was going for, that was I think 2005 or so. So he came to me after Isha Salah, he said, Maulana, he's an Arab man. You know, from Arab people to have one with beard is very rare. So he said, you know, I was keeping beard all along, there was no problem. Now my attorney says if I shave, I have a chance, otherwise it looks like they may not give me. So I asked him, why are you keeping this beard? Is it a fashion or is it because of Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? He said, it's because of Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I said, then will you sacrifice the Sunnah of Rasulullah just because of hoping to get a citizenship of America? Or you, maybe Allah subhanahu wa ta'ala, who has the control of everything, he might have decided that he gives you the citizenship of America without sacrificing this thing. And imagine if you shave it and they still don't give you, then you are khasirat dunya wal akhirah, you lose both sides. Rather, depend on Allah subhanahu wa ta'ala, and you haven't done it for any reason but for Allah and for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's revival of his sunnah. Don't put yourself into big trouble. Just make dua to Allah night time, read 2 rakats namaz, and in the morning go for interview. Alhamdulillah, next night he came, he said, I got it without shaving. He got his citizenship. It's like that. We put ourselves like we are inferior. We are feeling with beard, we feel inferior. With kurta, we feel inferior. With having no mustache, we feel inferior. As if we know, in Punjabi language, in Pakistan, I remember our community is not in army. And they encourage them to have, mustache and no beard. So I remember them saying, much nahi to kuch nahi. I still remember them saying, much nahi to kuch nahi. Agar much nahi to kuch bhi nahi. Subhanallah. Halanke, much nahi to sab kuch hai. Huzur ko much pasand nahi hai. Huzur doesn't like the mustache. And Huzur loves the beard. Some people came from Persia. They were the ambassadors of Persia. Shaven. There was no beard and there was a mustache hanging. Rasulullah asked them, what is this? That is our master, he told us to do that. He said, but my master told me the opposite. Allah subhanahu wa ta'ala told me to shave the mustache and look after the beard. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in some of the hadiths you'll find that you must lengthen your beard and get rid of your mustache and go against Yahud and Christian. And in one hadith is, وَخَالِفُ الْمَجُوسِ, go against the fire worshippers. It means Yahud, Christian and fire worshippers, they are the inventors of this shaving of the beard and lengthening of the mustache. They used to do it even in those days. Musalman ki nishani dadi ke saath. So, اِعْفَاءُ الْلِحْيَا قَصُّ الشَّارِبِ اِعْفَاءُ الْلِحْيَا. Or having beard is not against the beauty, is part of the beauty. Uske baad, istinshaqul ma, naak mein paani daalkar naak ko saaf karna. Ye to hamare wuzu mein maujood hai. Jo aadmi wuzu karega, wo naak mein paani daalega, the one who is going to make wudu 5 times a day, is going to clean his nose properly with water. Naak saaf rahega, sari bimariyan dur rahengi. Ji, Allah Ta'ala ne, some of the things, Allah Ta'ala put them in for us, inbuilt, so that we stay clean. A Muslim will be always clean. Uska muh bhi saaf hoga, uska naak bhi saaf hoga, uska jism saaf hoga, ye musliman hai. Andar se bhi saaf hoga, bahir se bhi saaf hoga. Inside also, outside also. So, istinshaqul ma, wassiwak. Lawla ana shuqa ala ummati, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Or in the kulli salat, sab kuch hai. If it was not too hard for my ummah, I would have ordered them, and I would have made it farz upon them, that they must make miswak at the time of every wudu or at the time of every salah. So, dant ki safai, aur uska fayda, so everybody knows, but we hardly practice, that we must practice this sunnah, is such a powerful sunnah of miswak, at the time of death, it reminds a person with Kalima Shahadat. Subhanallah. Jo aadmi miswak karega, wo marte hue bhi usko fayda degi. Zindagi mein bhi fayda, uske dant bhi achhe, masoode bhi achhe, muh bhi saaf, sab kuch saaf. Aur marte hue kalima, yaad, it is going to remind us of kalima. वो अमेरिका के एक किस्सा है, आई थिंक आई रेड इट समवेयर, इन अमेरिका तबलीग जमात में एंड दे पुट अप इन ओल्डन डेज, पुट अप इन अ मस्जिद, तबलीग जमात हमेशा मस्जिद में जाती. सो ए मैन हु हैड अ डेंटल प्रॉब्लम, ही हैड गॉन टू सम डॉक्टर, डेंटिस्ट, स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट, एंड दैट dental surgeon checked his gums and this and that, and he gave him some medication, explanation, this and that, with all the lectures he heard 1 hour, and went for treatment. Then he came out. While he was going to his house, he seen jamaat offloading their luggage, bedding, bedding, utar ke andar ja rahe hain. So he joined them there, and he went with them, helped them, took them inside. He was a new Muslim. Took them inside, he sat with them, and namaz time came, they all took out miswak. He didn't have miswak, so they offered him one also. So he first time he was seeing all this, he said, what is this? He said, this is a miswak. It's very good, it's a sunnah, like that. So he took it, and he started using it. After about 2 or 3 weeks, he went back to the dentist. So dentist was very happy with his condition of his gums and teeth, and everything had improved. There were tremendous improvement. So doctor was very happy. He said, you use my medication and whatever I gave you. He said, no, not at all. Aapki dawai ko to maine haath bhi nahi lagaya. He said, then what I see, there's so much improvement. What you have been doing? He said, he took out the stick. Lakdi nikali. Miswak. And he showed him, he said, ye main istemal karta. I said, what is this? He said, no, there was a jamaat. He then explained to him, the Muslim group came and this and that. They were using it, and they gave me, I've been using it for 3 weeks. I see all the, he said, please show me, who are these people? He went and met them and became Muslim also. Miswak, Allah ne ajeeb ne'mat rakhi hai. So was siwak. Rasulullah sallam, last time, passing away, that Aisha Siddiqa, radiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallam looking at her brother, Abdul Rahman ibn Abi Bakr, was carrying miswak. He was looking at the miswak again and again. Aisha Siddiqa told him, please give us miswak. Rasulullah was looking at it. Then she made it wet and soft in her mouth and put in the mouth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's how Rasulullah passed away while he was making miswak. Then, wa qassul azfar, clipping the nails. Ghaslul barajim, washing the knuckles, all the joints must be kept clean. That is barajim. Natful ibit, plucking the underarm hair. In olden days, people used to pluck. I remember when we were students also, there were students who used to pluck. Very easy, because they were used to plucking. Now we are not used to plucking. Okay, there is no hard and fast. They say, Moli sahab put us in trouble. Plucking, you know, my whole skin comes off. So you don't have to do that. But as a first thing, we can get used to it, then it becomes very easy. Because it's a long-lasting cleanliness. Natful ibit. The word is used is natful ibit. The plucking, pulling out of the hair underarm. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used halqul ana, cleaning the under-navel hair, puberty hair, must be kept clean. No bush family there. Bush ko ijazat nahi hai. Wo bhi. Halqul ana. Then, intiqasul ma. And cleaning ourselves after relieving ourselves with water. And the word has been used in intiqas. Intiqas in Arabic language is taken from naqs. And naqs and nuqsan means lessening. Lessening of something. So, intiqasul ma, in other words, indirectly can refer to that when you are going to use water, is going to help lessen the dropping of urine. We have many times urine problem. You know, the drops coming one after the other and long time is not drying and all that. When we make istinja with water, it helps get rid of those stuck drops. We don't want to come it helps to come, let them come out and clean the whole matter, and there is nothing left in the passage, especially for a man. In the Qasulma, making istinja with water. Again, yahan par bhi Allah ne hame shuru se cleanliness sikhai. Western civilization, bilkul opposite. Kaagaz ragadte raho, uske upar gandagi ko khub multiply karo, uske upar perfume dal do. Multiply the dirt, then spray it with some type of alcoholic. वो भी उसमें भी अल्कोहल होता है तो वो भी फिर गंदा डबल गंदा करके फिर और गंदा करके फिर उठकर कहो मैं सबसे ज्यादा सिविलाइज नेशन हूं आई एम द मोस्ट सिविलाइज قال الراوي ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة the reporter in between is a Mus'ab he says that I have forgotten the number 10 looks like it must be madmada it means gargling of the mouth but we know there's a hadith of Abu Hurairah radhiyallahu anhu which mentions five things of fitra in that khatna also is mentioned circumcision so ye bhi wuzu ki sunnat hai sahab piche anbiya ki bhi sunnat hai Hazrat Ibrahim alaihis salam ne when he was in his old age he made khatna of his own self so khatna bhi sunnat ye bhi ek allah ki nemat musliman ke liye so musliman ko chahiye ki apne zahir ko bhi islami bana kar rakhe ye masna se क्यों नहीं इस्लाम तो दिल में होना चाहिए जैसे औरतें पाकिस्तान में औरतें कहती है पर्दा दिल में होना चाहिए दिल में हया हो बाहर से जो मर्जी करो ऐसे गलत है तो इस्लाम का तकाजा यह है कि हम इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करें हमारे यहां उलमाए किराम ने कहा कि जो जो लोग यू नो पॉलिटिकल फाइट हो रही है बहुत ज्यादा हालांकि वो मुसलमान लोग हैं और इस्लामी निजाम को लाना चाहते हैं दे वॉन्ट इस्लामिक सिस्टम टू कम But they do not succeed and then nothing happens. This reason is because they do not implement law of Islam on 6 feet body of their own. They want it to the whole country, sub Islami law un par lag jaye. Lekin apne jism par lagane ke liye tayar nahi. Nahi, main zara abhi sochunga. I am going. So those type of parties, what type of Islam they are going to bring? Make dua, Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayat. Allah ta'ala hamari, hame daadi rakhne ki taufeeq de. Uski hifazat karne ki bhi taufeeq de. उसको बढ़ाने की तौफीक दे उसको खूबसूरत रखना यह भी जरूरी है और मूंछों से अल्लाह ताला हिफाजत करे अल्लाह ताला हमारे जाहिर को भी इस्लाम के मुताबिक कर दे और अल्लाह ताला हमारे बातिन को भी इस्लाम के मुताबिक कर दे और अल्लाह सुबहान व तआला हमारे जितने भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए अल्लाह सुबहान व तआला दीन पर चलना हमारे लिए आसान कर दे और मुसलमान उम्मत के जो Mushkilat, whatever difficulties the Muslim Ummah is facing all over the world, make dua Allah subhanahu wa ta'ala remove that difficulty. Let us make dua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min al khayri kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'uzu bika min al sharri kullih, ajilihi wa ajilih. ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك من خلقك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم انصر الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها واخذل الكفرة الظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم زلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين